ओम शांति। सो अभी भैया ने बोला इंग्लिश में कि डायरेक्ट मेमोरी से बोलना है, तो मैं मेमोरी से ही बोलने की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरा टर्न कल था और सरप्राइजिंगली भैया ने रात फोन किया। तो पिछले कुछ दिनों से ज्ञान सरोवर में सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन चल रहा था, उसमें बहुत ज्यादा बिजी थे, तो हमने सोचा कल संडे स्पेशल रखेंगे टॉपिक के लिए। तो शाम को भैया ने फोन किया और मेरा टॉपिक भी ऐसा था कि मैं बहाना नहीं दे सकता था। टॉपिक था बहानेबाजी की बाजी। तो मेरे पास एक जेन्युइन रीजन था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, हाँ करनी है तो कोशिश करूंगा कि वहां तक पहुंचू। सो हमारा टॉपिक जैसे है बहानेबाजी की बाजी। तो इट वॉज शायद 18 तारीख को बाबा ने मुरली चलाई थी कि बाबा तुम्हें कितने खजाने देते हैं, तुम लोगों को दौड़ दौड़ के आना चाहिए, बट बहाना करते हैं। और अव्यक्त मुरली की लास्ट अव्यक्त मिलन पे जो मुरली बाबा ने चलाई है, उसमें भी बाबा ने बोला है कि अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी करते हैं। तो बाबा ने बताया चलाया किसने, ठीक है। तो वो फिर ट्रेडमार्क हो गया कि बाबा बोलता है वो समझ में नहीं आता, दूसरे बोलते वो चला देते हैं, इस तरीके से बाबा ने बोला। तो इस चीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों के पास कॉपी और पेन है वो, और जिनके पास नहीं है वो अपने माइंड में ये एक सेटअप ले ले कि वो ब्राह्मण बने क्यों है। एक ही, सिर्फ एक शब्द, सिर्फ एक शब्द ले लें कि आप ब्राह्मण बने क्यों हैं, जैसे बाबा की प्रत्यक्षता करने के लिए, वॉट एवर जो भी है। नहीं, बस अपने माइंड में रखना है कि आप ब्राह्मण बने क्यों हैं। तो बाबा ने एक डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन बताई, ए प्लस ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, अलबेला प्लस आलस्य इज इक्वल्स टू बहानेबाजी। तो सबसे पहले अलबेलापन जो आता है वो मेन सोर्स होता है जो सारी चीजें शुरू करता है। लाइक हम डेली अमृत वेला कर रहे हैं, अच्छा भी जा रहा है, तो मैं इस चीज का बहुत ज्यादा रिपीट करता हूं कि माया, जैसे बाबा बोलते हैं कि ड्रामा जो है वो टिक 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 करता है, उससे भी स्लो क्या चलता है, ड्रामा से भी स्लो क्या चलता है, पुरुषार्थ। ऑलमोस्ट सही। और उससे भी स्लो माया, माया को कोई भी जल्दी नहीं है आपको ब्राह्मण जीवन से मारने में, नथिंग। वो इतनी स्लो है, इतनी स्लो है, हमें पता भी नहीं चलता है कि वो कैसे वर्कआउट कर रही है, और हमें चीजें ऐसे लगती है ये चलता है। और बस इसी चीज का बेस बनते ही सबसे पहले जो बेसिक माइनर चीज आती है, शिव भगवान उवाच चलता है, ठीक है। शिव भगवान उवाच लास्ट अवतरण की मुरली में, उस समय वो महारथी है ही नहीं जिस समय वो कर रहे हैं। और हमारे पास रीजंस हमेशा दूसरों के होते हैं, अपने रीजंस नहीं होते। हमने उनको देखा है, हमने उनको देखा है, हमने उनको देखा है। हर किसी के पास कोई ना कोई रीजन है। और मेरी लैंग्वेज में अगर आप, मैं जिस तरीके से यूज करता हूं, रीजंस ऑलवेज मेक्स यू वीक, इवन जेन्युइन रीजंस मेक्स यू वीक। आपके पास एक जेन्युइन रीजन है रात को कि आप लेट आए, राइट, जेन्युइन रीजन है, और सुबह उठा भी नहीं जा सकता, बट आपके पास एक रीजन है। तो कल को अगर आप लेट आते हैं तो आपके पास ऑलरेडी मेकअप है एक, कि आपने अपनी इंटेलेक्ट को मेकअप किया हुआ है कि मैं नहीं उठ पाऊंगा। तो फिर दूसरे दिन वो पक्का हो जाएगा। तो पहले अलबेलापन था फर्स्ट डे, दूसरे दिन वो आलस्य बन जाएगा, और फिर मैं तो रोज ही लेट आता हूं, चाहे ऑफिस है चाहे कुछ है। एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मम्मा का आप लोगों ने सुना ही होगा। रात को 12 बजे कोई मिनिस्टर मिलके गए थे, मम्मा फिर से 2-2.5 बजे उठे, और मम्मा से पूछा कि आप इतना जल्दी क्यों उठे हैं, और वो लोग इतनी लेट आप सोए हैं। तो मम्मा ने बोला, जब मैं उस मिनिस्टर के लिए रात तक 12 बजे तक रुकती हूं, तो ये तो सबसे बड़ी अथॉरिटी है, तो क्या इसके लिए इतना नहीं उठ सकती एक दिन? और जो बाबा ने दो बाजी बोली हैं, जिसमें मुझे सबसे अच्छा शब्द लगता है कल्प कल्प की बाजी, इस बार का जो इस कल्प का या इस संगम युग का जो मेन पुरुषार्थ मुझे जो सबसे पहले टच किया था जब मैं नया नया ज्ञान में चला था, कि कल्प कल्प की बाजी है, मीन्स आप एक बार रिपीट कर दो, एक बार फीड कर दो और उसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिकली चलेगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली चलेगा। मतलब सिर्फ इस बार आपको फीड करना है अपना ड्रामा, और वो फीड करते ही सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। आप सभी ने वो लिख लिया है ना अपना एक शब्द, आप ब्राह्मण क्यों बने। तो अमृत वेला, सबसे पहले बहानेबाजी जो शुरू होती है उसमें हमारे लिए एक चीज ये रहती है कि हम अपने आप को बहुत ही माइनर समझते हैं, ठीक है। जैसे बाबा ने महारथी का एग्जाम्पल दिया, हमारे यहाँ ईयर्स में काउंट होती है नॉलेज, हम 30 साल से हैं, हम 40 साल से हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स देते हैं हम लोग कि मैं 30 साल से कभी अमृत वेला मिस नहीं किया। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर 30 साल से आप अमृत वेला कर रहे होते तो वो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इट स्पीक्स, यस इट स्पीक्स, वो हर चीज से दिखाई देता है। कोई पूछता है इट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन कई बार आप फ्रंट से आके बोलते हैं कि ऐसे है, वो आप पीछे, अगर इसके पीछे की थोड़ी सी वो देखी जाए तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि आई एम नॉट रॉन्ग, मैं बिल्कुल एब्सोल्यूट ठीक हूं। और वो चीजें फिर वो लोग चले जाते हैं, वो चले जाते हैं आपकी, जब आपको सपोज टू बी आप किसी के सामने बोले मैं 30 साल से 20 साल से 10 साल से अमृत वेला मिस नहीं किया, तो ऑब्वियस सी बात है दे विल प्रेज यू, आपको करेंगे वाह हमारा तो ऐसे 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 होता है, तो फिर आपके पास एक बैकअप बन जाता है क्योंकि उन्होंने प्रेज किया, हाँ आई एम ओके आई एम द किंग। तो किंग को तो फिर कुछ भी चीजें उसके सामने नहीं आती, क्योंकि इनर जो शुद्ध ईगो का लेवल है वो बढ़ जाता है, फिर उसमें हमारा कॉन्शियसनेस बिल्कुल भी हमें अलाउ नहीं करती कि इसमें और इंप्रूवमेंट करनी है। वो बहानेबाजी फिर चल के धीरे धीरे धीरे, 30 साल तो हो गए, वीक में एक बार छुट्टी हो गई तो क्या हो गया, चलता है। 30 ईयर्स का बैकअप है। और ये चीजें फिर आगे चल के धीरे धीरे, वो जो आलस्य है वो आलस्य नहीं विकार बन जाता है। बाबा जिस आलस्य की बात करते हैं वो है सिर्फ कि समटाइम्स हो गया, विकार मीन्स आप डेली करना शुरू कर देते हो। जैसे हम लोग सभी के पास ब्राह्मण बनने के बाद एक ऐसा जाता है कि ब्राह्मण तो बन ही गए तो सब कुछ फिक्स हो गया। हमने कहीं सुना था कि किसी सेंटर पे ही किसी बहन जी ने बोला या किसी भाई ने बोला कि जो ब्राह्मण बन गया वो स्वर्ग में जरूर आएगा, ठीक है। इट्स नॉट समथिंग लाइक वेरी इजी, आप सबसे सर्वोच्च सत्ता के लिए चुने जा रहे हैं। अगर हम 700 करोड़, इट्स अप्रोक्सीमेटली 800 करोड़ की जनसंख्या है, हम 33 करोड़ भी अगर चुने जाने हैं तो देख लीजिए कितनी बड़ी 1% से भी माइनर सिलेक्शन है। ऐसे ही तो नहीं हो जाएगी, यू हैव टू प्रूव यूर सेल्फ। तो बाबा के शब्दों में कि तुमने बाबा भी बोला तुम स्वर्ग में आ जाओगे, तो स्वर्ग में आके क्या करेंगे? शिव भगवान उवाच है कि बाप का बन के भी भरी ढोई तो क्या, तो ये बाप का नाम बदनाम करना हुआ या बाप का नाम ऊंचा करना हुआ? तो हमें उस बहानेबाजी से आलस्य तक नहीं जाने देना, अलबेलेपन से आलस्य तक नहीं जाने देना। और फिर बहाने, और बहाने इतने जेन्युइन होते हैं। शिव भगवान उवाच, मैं शिव भगवान उवाच इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बाबा के शब्दों में ज्यादा सही रहती हैं चीजें बोलनी। तो बाबा कहते हैं बाबा को भी सिखाते हैं, बाबा का ज्ञान बाबा को भी सिखाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मोहिनी बहन जी, जिन्होंने भी रिसेंट शरीर छोड़ा शांतिवन की, तो उनको थोड़ा सा बुखार था तो ठंड लग रही थी, तो बाबा सुबह सुबह राउंड लगाते थे सभी बच्चों के पास। तो उनको देखा तो क्या हुआ, तो यूं कहा बाबा थोड़ी ठंड लग रही है अमृत वेला के बाद, तो यूं कहा हाँ, तो एक रजाई और डाली और बोला कोई नहीं बच्ची सो जाओ। ठीक है, जैसे ही वो सो गई तो ऑब्वियसली बात है मुरली तो जानी ही थी। तो कुछ दिन बाद ब्रह्मा बाबा को थोड़ा खांसी हो रही थी, तो कोल्ड था कफ भी था, तो बाबा को बोला कि बाबा आज तो आपको खांसी, आप तो नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं बच्चों की तरह थोड़ा ही हूं कि हल्की सी सर्दी होते ही दो दो रजाई लेके सो जाऊं। अपने आप ही ब्रह्मा बाबा ने रजाई दी थी और अपने आप ही फिर उनको तो दीदी ऐसे होगी एकदम से, तो पूरा दिन फिर शेड्यूल, क्योंकि पीछे से एक बैकअप मिल गया कि ब्रह्मा बाबा ने बोला है, ब्रह्मा बाबा ने रजाई दी है, मतलब यू आर सिक्योर कि हाँ अब तो श्रीमद है रजाई। तो इसी तरीके से हमारे पास पॉजिटिव बैकअप्स हो जाते हैं। इसी चीज में एग्जांपल्स की अगर बहाना देते, एक एक बहाना पास करने से हम कहां पहुंचे हैं। जगदीश भाई जी, एक टास्क 5 to 6 पीपल्स, 5 से 6 लोग, भरतपुर कोठी, कोई मिनिस्टर के पास लेटर लिखना है, सभी को लिखना है, लाइट चली गई, सबने क्या सोचा कि लाइट भाग गई, बाबा को दे देंगे, बता देंगे सुबह की लाइट भाग गई, मींस रीजन मिल गया और रीजन जेन्युइन था। जगदीश भाई जी के पास एक टास्क था कि मुझे बहाना नहीं देना है, उन्होंने कहा कि भगवान की पहली पहली आज्ञा है हमारे लिए और मुझे करनी है। विश्वकिशोर भाव के पास गए, उन्होंने टॉर्च दी, तो जैसे हमने थोड़ा सा सुना है तो विश्वकिशोर भाव जब सेल डिस्चार्ज हो जाते थे उसके बाद भी उसे धूप में रखते थे, वो फिर से थोड़ा बहुत चार्ज हो जाते थे तो वही रीयूज होते थे, तो वो टॉर्च दी तो थोड़ी देर बाद वो भी डिम करके पूरा। तो जिन लोगों ने भरतपुर कोठी देखी या नहीं देखी है, ऊपर से नीचे तक की बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, वहां पे आके उस जंगल में तब ऐसा तो नहीं होगा, और पूरी रात स्ट्रीट लाइट में वो लेटर लिखना, फर्स्ट इंग्लिश हिंदी, सेकंड फेयर करना, कट भी किए होंगे, और फिर उस तक सुबह तक जब ये सुबह का ट्रैफिक कंट्रोल हो रहा था अमृत वेला का, जाग सजनिया जाग, वो ऊपर आ रहे हैं और वो लोग हंस रहे हैं। सारी स्टोरी के बाद एक चीज, वो बाबा मुरली में भी भूल गए और वैसे भी, लेकिन जब बाबा को याद आया पिकनिक की ड्यूरेशन में, पिकनिक लेके गए और ऊपर की, अच्छा अच्छा कौन कौन लिख के ले आया है, तो बाबा ने जो सर पे वो वरदान रखा, एक छोटा सा बहाना नहीं दिया, और जगदीश भाई सबसे आगे लाइन में खड़े हो गए और आज तक उन्हें कोई बीट नहीं कर पाया इस चीज में। सिर्फ जेन्युइन रीजंस ऑलवेज मेक, इवन जेन्युइन रीजंस मेक्स यू वीक। रीजन था लाइट चली गई, अब उसके बाद उन्होंने एफर्ट भी किया है, ऐसा नहीं है, टॉर्च भी लिया है, नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद कौन आज्ञा दे रहा है। तो ये बाबा की आज्ञा, इसमें कुछ जो बहानेबाजी हमारी चलती है, 3 या 4 चीजें मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं आपको, आप सभी को पता है, तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, मतलब हिस्ट्री से लेके। तो सबसे पहला है अमृत वेला। अमृत वेला में सबसे ज्यादा बहानेबाजी, जैसे अभी अभी बताया, अगर अमृत वेला पकड़ में आ गया तो हमें कुछ भी पकड़ने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली प्रोसेस चलेगी, क्योंकि वो बैटरी फुल है। सारा दिन कितना ही डाटा यूज कीजिए, कितना ही कुछ भी यूज कीजिए, म्यूजिक बजाइए, कुछ भी, फोन की बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी। दादी जानकी जी लंदन में थी, अमृत वेला किया, तो उसके बाद मुरली में दीदी मनमोहिनी जी से मिली, इट वॉज 70 लास्ट डेकेड। तो मनमोहिनी दीदी जी ने बोला कि अमृत वेला किया, तो दादी जी ने कहा हाँ मैंने किया, क्योंकि तुम बाबा रूम में नहीं थी, उन्होंने कहा ठंड हो रही थी इसलिए अपने रूम में किया। दीदी मनमोहिनी जी ने स्ट्रेट बोला, अपने आप को धोखा दिया, अपने आप को धोखा दिया। और अभी शायद एक दो साल से ही दादी जी हमारे पास ऊपर नहीं रुकती है, नहीं तो अभी तक जब तक हम ज्ञान सरोवर में हैं तब तक हमेशा देखा है, क्योंकि ज्ञान सरोवर कैंपस छोटा है तो वहाँ चीज़ें बहुत ईजी हैं। तो दादी जी सुबह 4 बजे उठ के अपने सिटिंग रूम में बैठती हैं, आज तक वो रूल फॉलो किया है। यहाँ पे भी आप एग्जाम्पल है, आप में से किसी का भी एक क्वेश्चन, एक छोटा सा माइनर संकल्प नहीं चल सकता दादी क्यों नहीं उठ रही है। रीजन जेन्युइन है दादी जी के पास कि नहीं उठ सकती, हेल्थ है, 104 है, 102 है, लेकिन कोई बहाना नहीं है, बिकॉज दे नो हमें देख के सारे पीछे से सब गिरेंगे, हम आधार मोड़ देना। और एक छोटी सी परसेंटेज जो मैं आप लोगों के लिए बताना चाह रहा हूं कि हम लोग 33 करोड़ चुने जाने हैं, 1 करोड़ भी नहीं हुए हम ठीक से, तो हमारा सिलेक्शन एक्सक्यूज मी हमारा सिलेक्शन बहुत ज्यादा कीन प्रोसेस में, बहुत ज्यादा कीन, इतना ज्यादा बहुत ज्यादा उसका। और हमारे पास रीजन से हम लेट आए हैं, 80 साल हो गए, ये हो गए, वो हो गए, बहाने, और यही चीजें हमें पीछे खींच लेती है। पुरुषार्थ, मम्मा जी बोलते पुरुषार्थ किसी का कम नहीं है, खर्चे की परवाह नहीं है, कहां कहां हो रहा है, सारा दिन एक एक रुपया कैसे जाता है किसी को नहीं पता है। तो अमृत वेला स्ट्रांग मुरली, शिव भगवान हुआ छे, टांग भी टूटी हो तो पीछे आके लेट जाओ लेकिन जैसे भैया ने बताया कि जेन्युइन रीजन, अब बीमार है तो जाहिर सी बात है उठ नहीं सकता, सचिन भैया बोलेंगे कहीं नहीं जाना है तो कैसे जाएंगे हॉस्पिटल में है तो तो वो चलता है, उसके लिए बाबा भी छुट्टी मींस जब जेन्युइन रीजन है हमारे पास ये वाला कि हमारी बॉडी बिल्कुल वर्कआउट नहीं कर रही और बाहर जाने से और ज्यादा स्थिति खराब हो जाएगी, तो ये नहीं कि ठंड ज्यादा हो रही है और थोड़ा सा और ऊपर करके चलता है कुछ लोगों को हमने भी देखा है रूम में ऐसे पूरा कंबल डालेंगे ऐसे और गुप्त अमृत वेला करते हैं तो सेकंड मुरली में बहानेबाजी, सेवा है, ऑफिस है, घर में बच्चे, शायद इसी अवतरण पे बाबा ने बोला था सम्मुख मुरली सुनने की जो प्राप्ति है वो बिल्कुल अलग है, मजा अलग है। साकार बाबा के समय एक बार, क्योंकि बाबा 5 मिनट पहले आते थे, मम्मा उनसे थोड़ा सा और पहले आके मुरली चलाती थी, तो कोई भी रीजन रहा हो उस दिन मम्मा से पहले बाबा एंट्री करके गए, तो मम्मा ने सीढ़ियों पे बैठ के मुरली सुनी मुरली के समय, और किसी ने कहा मम्मा आप आगे आ जाइए, अंदर आ जाइए, लेकिन नहीं, बाप का डिसरिगार्ड है, अगर मैं उनके बाद अंदर जाती हूं तो बाप का डिसरिगार्ड है। उस लेवल की कॉन्शियस हमें रखनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं दो चीजें हमारे साथ प्रॉब्लम कर रही हैं, वो ये, एक हम खुद को नहीं जानते, एक हम बाबा को नहीं जानते। दादी गुलजार जी के साथ ज्ञान सरोवर निवासियों की एक छोटी सी मीटिंग, मतलब गेट टुगेदर, जब दादी जी यहाँ थे, हम अर्ली डेज में थे, तो क्वेश्चन आंसर सेशन ही होता है जो चिट चैट होती है, तो उसमें दादी गुलजार जी से पूछा था कि दादी हमें सब पता है अमृत वेला है, संगम युग है, फिर नहीं आएगा बाबा, तब भी मिस्टेक्स क्यों हो रही हैं, तब भी गलतियां क्यों हो रही हैं, तब भी पुरुषार्थ में एफर्ट क्यों लग रहे हैं। तो दादी गुलजार जी ने कहा था या तो भगवान की वैल्यू नहीं पता है या भगवान से वैल्यूबल चीज तुम्हारे पास कोई है। इसी तरीके से अगर मुरली में लेट है, मुरली मिस करते हैं और मुरली किसी ना किसी तरीके से कहीं भी लेट गो करते हैं, और मुरली मिस करना इट डजंट मीन कि आप क्लास में नहीं आए, मुरली मिस करना अगर आपने उसे पूरे दिन पढ़ के चिंतन नहीं किया एक पॉइंट पे कम से कम, या उसमें से कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया, मिस ही है वो। भगवान आया 1 घंटे सब कुछ किया और उसके बाद कुछ भी नहीं हमारे पास, कुछ भी नहीं। इसी तरीके से क्लासेस की बात ले लीजिए, सब लोगों को क्लासेस सुनना पसंद है, कोई भी महारथी आके बैठेगा क्लासेस क्लासेस क्लासेस। अब एक छोटा सा एग्जांपल, हम किसी का हाथ नहीं खड़ा करवाते, पिछली जो क्लास सुनी उसमें से क्या इंप्लीमेंट किया आपने अपनी लाइफ में? उस समय के लिए तो वो इफेक्ट डालता है क्योंकि बहुत बड़ा महारथी है, बोल रहे हैं और सुनने का वो सब चीजें, बट आपने उसमें से लिया क्या? अब जो चिंतन करके ला रहा है उसने अपना टाइम मनी एनर्जी सब वेस्ट किया है उसमें, लगाया है सॉरी, तो वो आपने लिया तो ये तो, और ले रहे हैं आप। कई लोग सोचते हैं क्लास सुनना योग है, योग नहीं है। उस समय तो आप ले रहे हैं, जो भी स्पीकर से आप सुन रहे हैं उससे आप ले रहे हैं। फिर उसमें हम क्लासेस सुनते हैं बट वो जो खुद का चिंतन है वो डेवलप नहीं हो पाता। तो पहले अमृत वेला, फिर मुरली क्लास, ट्रैफिक कंट्रोल्स, ट्रैफिक कंट्रोल्स में, ट्रैफिक कंट्रोल इज डजंट मीन कि जो हैं ऑफिशियल वो तो हैं ही, लेकिन उस समय अगर आप सेवा में हैं तो अपना ट्रैफिक कंट्रोल बना सकते हैं। आप 12 बजे फ्री नहीं हुए, उस समय आप खाना डाइनिंग में सर्व कर रहे हैं, तो 12:30 बजे 1 बजे 5 मिनट बैठ सकते हैं, लेकिन हम तो उस समय सेवा में थे, रीजंस, इसलिए मिस हो गया। मिस कहां हुआ है, आप अब बना लो। दादी जानकी जी पांडव भवन से एंट्री कर रही थी जहां ये अपना श्री कृष्ण का तस्वीर है, तो उधर से मनमोहिनी दीदी जी आ रही थी। ट्रैफिक कंट्रोल हुआ 10:30 बजे का, तो दोनों खड़े हो गए। उसके बाद दीदी जी ने दादी जी से पूछा, योग किया? दादी जी ने तो मुस्कुराई, तो दीदी ने कहा कि योग लगा। तो फिर दादी जी थोड़ा सा, तो क्योंकि योगी का चेहरा भी पुरुषार्थी वाला नहीं होना चाहिए, दीदी मनमोहिनी जी दादी जानकी जी को कहती हैं। जैसे कई बार बहुत ज्यादा साइलेंस में जाते हैं, जाना चाहिए, योग करना चाहिए, बट हमारे चेहरे से वो रमणीकता झलके कि हमें भगवान ने चुना है। तो ट्रैफिक कंट्रोल्स में जैसे हम रीजन देते हैं कि ये हो गया वो हो गया, ट्रैफिक कंट्रोल्स का, ट्रैफिक कंट्रोल सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है पावर बूस्टर्स हैं। वो 3 मिनट आपको अगले घंटे के लिए, हमने कई बार एक्सपीरियंस किया है इसका, डेली हमारा टारगेट रहता है, मतलब वहां पे जो संगठन चलता है ज्ञान सरोवर में, कि 10 ट्रैफिक कंट्रोल एटलीस्ट हमें फॉलो करने हैं। और वो ऐसे जो एक एक घंटे के योग में हमें एक्सपीरियंस नहीं होता है कई बार बैठ के, वो उन 3 मिनट में हो जाता है। बाबा की एक एक श्रीमत इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है, बहुत ज्यादा। चार्ट में बहानेबाजी, शिव भगवान हुआ चाहे, जो बच्चे रोज रात को चार्ट देके सोएंगे वो धर्मराजपुरी में नहीं आएंगे। अभी अभी आई थिंक लास्ट मंथ की, कि 98% बच्चे बाबा को चार्ट नहीं देते, 2% है वो भी ऊपर नीचे होते रहते, शिव भगवान हुआ चाहे, मुरली में था। और चार्ट की इंपोर्टेंस इतनी ज्यादा है, हम अमृत वेला मुरली को इंपोर्टेंस देते हैं बट द मेन जो उस अमृत वेला का जो फाउंडेशन और मुरली का फाउंडेशन है वो है चार्ट, क्योंकि उस आपकी पूरा बोर्ड आपका लिखा हुआ है, पूरे बोर्ड पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप क्या लिखेंगे उस पर दोबारा? चार्ट इज द प्रोसेस। अभी अभी बाबा ने जो कल या परसों बोला नौदा भक्ति के लिए, नौदा भक्त होते हैं उनकी पहचान ऐसी होती है, तो उसमें थोड़ा सा देख रहे थे, जो जो नौदा भक्ति में होता है वो बाबा ने यहां सारा करवाया है। उसमें एक चीज होती है श्रवण, जो प्रभु की लीलाओं को देखना सुनना, यहां हिस्ट्री है, प्रभु की लीला हिस्ट्री है, दादियों ने क्या किया उसके बारे में कितना जानते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो नौदा अगर याद करनी है तो उन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। तो जो चार्ट की बात कर रहे थे, चार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट आई थिंक। अगर मैं थोड़ा सा अगर इस चीज में आगे होके बोलूं तो अमृत वेला से ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी है, क्योंकि ये ही उसको बनाता है। और इन सारी बहानेबाजी और आलस्य का एक फाउंडेशन है जो हमारे सोच में ऐसा आता है कि जो हमने आपको पहला शब्द लिखवाया था उसमें से कितने लोगों ने ऐसे लिखा है। आपका जो ब्राह्मण जीवन बनने का जो लक्ष्य है, ब्राह्मण क्यों बने, उसमें से कितने लोगों ने लिखा है कि मैं आठ में आ सकता हूं? कोई बताए कितने लोग हैं जिन्होंने लिखा है कि मैं आठ में आ सकता हूं? कितने लोगों ने लिखा है कि मैं 108 में आ सकता हूं? आप में से कितने ऐसे सोचते हैं कि हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण वो फर्स्ट वाला बन सकते हैं? ठीक है, हमारा लक्ष्य हाई नहीं है, हमारा लक्ष्य बड़ा नहीं है। शिव भगवान उवाच, लास्ट से लास्ट मंथ है शायद, कि बाबा के बच्चे बने शालिग्राम तो बन ही जाओगे, क्योंकि शालिग्राम को कुछ नहीं जरूरत पड़ती। शालिग्राम ऊपर पानी बह रहा है, आ रहा है, लुढ़कता फुड़कता तो गोल तो हो ही जाएगा। मूर्ति बनने के लिए कटना पड़ेगा। शिव भगवान उवाच साकार मुरली में, हाई एम। अच्छा, हाई एम क्यों नहीं रखा है? अभी जो मैं आगे चीज बोलने वाला हूं उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब अपना अपना नाम पुट करें किसी भी मुरली में, साकार मुरली में, अव्यक्त मुरली में, अव्यक्त संदेश में। किसी भी महारथी ने, दादी ने या दादा ने कभी कहा है, जैसे भाई जी आपका नाम केशव, कि केशव बच्चे तुम 8 या 108 में नहीं आ सकते? नहीं कहा। लिखा क्यों नहीं फिर? तो किसने कहा, किसने कहा? मैंने। बाप श्रीमत दे रहा है, मैं मन मत पे चल रहा हूं। जिसका एम ऑब्जेक्ट हाई होता है वो कभी भी बहानेबाजी गफलत में नहीं आता है। और मुझे पहले, अभी तो हम बाबा के बच्चे हैं तो इतना ज्यादा, तो क्रिकेट अगर आप सब लोग जानते हो तो क्रिकेट के जो लास्ट 5 ओवर्स होते हैं, अगर उसमें हम चेज कर रहे हैं और वो 5 ओवर्स की जो इंपॉर्टेंस है 45 ओवर्स की होती है, और शिव भगवान उवाच है, अंत में आने वाले बच्चे भी, ठीक है ना, 8 108 में आएंगे, क्योंकि बाबा को एग्जाम्पल सेट करने हैं। बाबा कभी भी पार्शल नहीं हो सकता। तो आपको किसने बताया कि आप नहीं आ सकते? और जो जो आईएएस की तैयारी कर ही नहीं रहा है वो पेपर पास कैसे करेगा? अब जो जो चीजें आपने लिखी है ब्राह्मण बनने का, इसको करके अगर ये नहीं है जो हमने बताया, आप उस नंबर वन लक्ष्य तक नहीं जा सकते। बट अब इसको रिवर्स कर दीजिए, अगर आप उस नंबर वन का लक्ष्य रखते हैं तो ये सब चीजें आ जाती हैं। शिव भगवान उवाच, जैसे ही आपका कोर्स हुआ, चाहे वो 30 साल वाला है, 50 साल वाला है, 10 साल वाला है, 5 साल वाला है, कोर्स होते ही सबसे पहला क्या दिया आपको? सबसे पहले क्या दिया? कोर्स पूरा होते ही सबसे पहला चैप्टर कौन सा था? लास्ट चैप्टर कोर्स की बुक का एम एंड ऑब्जेक्ट। एम एंड ऑब्जेक्ट मींस मैं शिव भगवान तुम पे विश्वास कर रहा हूं कि तुम ये बन सकते हो, बट हमारे पास बहाने, इतनी दादियां चली गई, इतने दादा चले गए, इतने सुपर सुपर चिंतन है, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, हम कहां हैं? लेकिन शिव भगवान आज भाषण कितने किए, सेंटर कितने खोले, ठीक है ना, कितनों को परिचय दिया, फर्क नहीं पड़ता, कितनों को सुख दिया, कितने निर्विघ्न रहे, कितनों को शक्तिशाली बनाया, शक्तिशाली बनाया। शिव भगवान उवाच 3-4 दिन पहले की मुरली में, बाबा को कौन से बच्चे पसंद है? भोले। अब भोले इट डजेंट मीन मुझे तो कुछ नहीं पता, बाबा बाबा करते रहो। भोले का मतलब है कि मुझे सब समझ में आ रहा है बट मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे पता है कि मेरी एक राह है और मुझे उस तक जाना है। हमें दादी जी का नाम नहीं पता बट आपने सुना होगा कि 615 चलता है। तो दादी जी को पढ़नी नहीं आती थी मुरली, बाबा जब सुनाते थे उसके बाद रिवाइज होती थी, तो एक ही कॉपी होती थी, 2 कॉपी होती थी, तो दादियां तब छोटी छोटी थी सभी। तो दादियां दादी के हाथ से ले लेती कि तुमको पढ़ना नहीं आता है तो तुम क्या करोगे इसका, तो दादी इतना रोई बाबा इस जन्म में आके मैं ये नहीं कर पा रही हूं। कितनी ही माताओं के एग्जाम्पल है बट मैं तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो बाबा ने सूक्ष्म वतन में उनको पढ़ना सिखाया, कैलाश देवी राइट, सूक्ष्म वतन में पढ़ना सिखाया। कैसे? उन्होंने ये नहीं देखा किसको आता है किसको नहीं, उन्होंने अपनी अर्जी भगवान के सामने रखी। अगर आप भी अपनी अर्जी भगवान के सामने रखते हैं मुझे बनना है, तो भगवान बनाने के लिए बैठा है। हम यहां पे एक नॉर्मल एग्जांपल देते, सपोज टू बी आप सब गार्जियन हैं और आपके दो बेटे हैं और आपकी घर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। अब आपने ले दे के लोन वोन सब करके अपने घर बार बेच के उनको दोनों को बीटेक कराई, वो बीटेक करा के एक बच्चा जॉब करना चाहता है, आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा भाई, पैसा आ रहा है, अच्छी जॉब है। दूसरा जो बेटा है वो कह रहा है नहीं मुझे एमटेक करनी है। अब आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, आप क्या करेंगे? एमटेक करनी है, आंसर नहीं, आपके पास अफोर्डेबल कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो दांव पे लगा रखा है। लेकिन भाई ने मना कर दिया है, छोटे भाई ने, बड़े भाई ने मना कर दिया, मैं अपनी सैलरी नहीं दूंगा, ऑलरेडी मेरा लोन चुकाना है। ओके, तो ये कंडीशन है कि जो बड़ा भाई छोटा भाई बेटा है वो करना चाहता है लेकिन कुछ भी नहीं है। अब छोटा बेटा कहता है कि पापा दो साल की बात है, जो फर्स्ट सैलरी होगी उसमें आगे और पीछे का सारा लोन सिर्फ फर्स्ट सैलरी में चुका दूंगा, तो क्या करेगा बाबा, क्या पापा क्या करेंगे? कुछ भी करके उसको एमटेक कराएंगे। क्यों? क्योंकि उसने उनको एक दावेदारी दे दी है। सेम यहां हम चल रहे, मुरली हो रही है नहीं हो रही है, अमृत वेला मिस हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। मधुबन में आए हैं, मधुबन से ज्यादा तो हम साइट सीन में दिखाई देते हैं, बहुत सारे ब्राह्मणों का ही कल्चर बन गया। जिस दिन वो ऊपर साइट सीन के लिए आते कलर यूनिफॉर्म में, ऑफेंसिव है ये, अगर आप मेरे शब्दों में पूछें कलर ड्रेस ऑफेंसिव है। नहीं, बीकेएस की बात करो तो जब मैं दावेदारी पेश करूंगा, तब भगवान मेरे पे काम करेगा। पैदा कर दिया है तुम्हें, कोर्स करा दिया, बीटेक हो गई है, अगर तुम्हें जॉब करनी है करो, जो पाई पैसे कमाने कमाओ, बट इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग वेरी स्पेशल यू हैव टू टेल, सॉरी, आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा मैं ये करना चाहता हूं, देन बाबा विल वर्क यू। शिव भगवान हुआ है ना, शालिग्राम से भी बन जाएंगे। अगर मूर्ति बनना है तो कटना पड़ेगा, तो मूर्ति अगर बनना है तो उसके लिए बहानेबाजी नहीं चलेगी, ऑप्शन बी नहीं होना चाहिए। जैसे एक बार भैया ने क्लास में बताया था कि एक बुक है बहुत अच्छी, ऑप्शन बी, बाकी शुरू से ये ऑप्शन भी मैं ऐसा यहां पे एम एंड ऑब्जेक्ट में एक ही ऑप्शन, जब मेरे भगवान ने मुझे कह दिया और वो मेरा पर्सनल बाप है, ठीक है, एम्पायर अपने घर का है तो फील्ड भी शील्ड भी सब अपनी है, अप्रोच तो करिए, आपने कभी कहा ही नहीं। और इस समय वैसे तो हम मधुबन में, एक छोटी सी एग्जाम्पल दे देता हूं, किसी से भी जाके पूछेगा आप ऐसी हंसी मजाक में कि आप आर्ट में आ सकते हैं, तो अगर उसने हल्का सा स्माइल कर दिया तो ये नो है उसका, समझते हैं ना। अब उससे कंसिडर कीजिए, पूछिए कि कितने साल से, सपोज टू बी वो 30 साल से या 40 साल से, तो 40 साल से उसने उस सीट के लिए अप्लाई ही नहीं किया है, तो सीट तो ऑलरेडी खाली है, यहां कोई मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि सबको पता है आर्ट में तो आदि रत्न आएंगे, लेकिन शिव भगवान वहां से सीट फाइनल नहीं है। इस स्थापना से पूरा एक आम का पेड़ है, उसकी डेफिनेशन किस चीज से दी जाएगी? एक आम का पेड़ है, आम का पेड़ लगाया बहुत बड़ा हो गया, उसकी डेफिनेशन कैसे, वो पहचाना कैसे जाएगा? फ्रूट से। अब ये पेड़ लगाया दादियों ने, स्थापना में उनका स्पेशल पार्ट था, रियली में था, उन जैसा हम नहीं कर सकते, लेकिन उनकी सरकमस्टांसिस अलग थी। आज यहां रह के डिजिटल दुनिया से और यहां के जो साधन है और उन सब से त्याग करना कोई छोटा मोटा त्याग है क्या? हम ब्राह्मण बन गए तो थोड़ा इजी लगता है, लेकिन रियली में उनकी कंडीशन अलग थी हमारी। तो इस पेड़ का फ्रूट कौन है? हम। मेरे से इस पूरे पेड़ की डेफिनेशन, दादियों ने जो काम किया है, अगर वो उसको मैं सफल कर लेता हूं, मैं अपने अभी एक ही प्रकार की जो सेवा रही हुई है, कौन सी है? बाप को प्रत्यक्ष करना। और कौन सी सेवा अभी रही हुई है? मनसा सेवा तो रोज करते ही है ना, रोज साकाश देते हैं ना, एक ही सेवा जो रही हुई है, चेहरे और चलन की सेवा रही हुई है। बस इसी से नहीं दिखाई दे रहा, बाकी सब चीजों से दिखाई दे रहा है, ब्रह्मा कुमारी, शांतिवन, रिट्रीट सेंटर्स, बड़े बड़े सेंटर्स, बट हमारा चेहरा नहीं बोल रहा है। तो वो जब चीजें हमारे सामने आ जाएंगी, और इसमें ज्यादा है, शिव भगवान उवाच है, ठीक है ना, बोली से बोली, जैसे माताओं की बात कही थी अभी, सब प्रकार की आत्माएं आर्ट में आएंगी, और शिव भगवान उवाच है 2014-15, ठीक है ना। तुम मेहनत तो करो, काम तो मेरा है, लेकिन सोचना नंबर वन का ही पड़ेगा। अभी ये बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, आपके पास एक ब्रांडेड कार है और आपके पास बहुत अच्छा फॉर्मूला वन का रेसर है, और आपने कहा चलो, और वो चल दिया क्योंकि आपका ऑर्डर है, अब जा रहे हैं जा रहे हैं। अब ड्राइवर ने पूछा कहां जाना है, क्योंकि वो नहीं पता, चलते रहो। फिर थोड़ी देर बाद पूछता है कहां जाना है, क्योंकि चलते रहो, हम बोल रहे हैं ना चलते रहो। अब हम यहां क्या कर रहे हैं, मुरलियां, योग, भट्टियां, मधुबन, सेवाएं, पर्चे बांटना, बड़ी बड़ी चीजें, क्यों? एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं है। और क्योंकि हम गाड़ी में जा रहे हैं, हवा तो लगी रही है, साइड सीन भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं, खुशी मिली रही है, तो हमें लग रहा है हम बहुत अच्छे चल रहे हैं। रियली में आप अच्छे चल रहे हैं, बट बिना एम एंड ऑब्जेक्ट के पहुंचेंगे कहां? अब सो कॉल्ड आंसर है सबके पास, आप क्या बनना चाहते हैं? बाप समान। बाप समान आप अभी भी हैं, किसी ना किसी वे में आप बाप समान है। आपने बाप समान कम से कम व्हाइट कपड़े तो पहने हुए, अगर आप कुछ भी नहीं करते हो। नंबर वन बाप समान किसको बनना है, फिर बाबा उस तरीके से वर्क करेगा। आईएएस में बैठने वाला जो व्यक्ति है वो टेंथ के एग्जाम दे सकता है, टेंथ में बैठने वाला आईएएस के एग्जाम्स नहीं दे सकता। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें कैसे अपने एम एंड ऑब्जेक्ट पे वर्क करना है। सबसे पहले इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके पूरा करूंगा। एक छोटी सी चीज अपने में इंप्लीमेंट कीजिए, जो भी आप कर रहे हैं, योग, ज्ञान योग, धारणा सेवा, रिवीजन, व्हाटएवर, सब कुछ सेम रखिए, लेकिन सिर्फ आज की और शाम तक के योग में अपना डिफरेंस देखें। तो आज जो कुछ भी आप कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मुझे श्री लक्ष्मी श्री नारायण तक ले जाएगा, मुझे मेरी नंबर वन गद्दी दिलवाएगा। बस इस रिमेम्बरेंस में आप आज का सारा सेवा कीजिए, जो भी आपको करना है, सारी दिनचर्या, और फिर शाम के योग में फर्क देखिए। हमारी डायरेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं डाइवर्टेड है। शिव भगवान वहां से मैराथन है, ठीक है, हम यहां से कोई सैटेलाइट भेजते, अगर वो इंच का भी उसमें डिफरेंस हो जाता है तो वो वहां से बहुत सारे किलोमीटर्स अवे हो जाता है अपने मेन ऑर्बिट से। इसी तरीके से यहां हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट अगर खिसका हुआ है, मुझे बाबा की बहुत सेवा करनी है, बाबा की प्रत्यक्षता करनी है, ये सब्जेक्ट्स है। अगर मैं किसी बच्चे से पूछता हूं कि आपका कौन सी क्लास में, वो कहता है इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज, तो क्या कहेंगे बच्चे को? कहेंगे कि ये सही बता रहा है, एम एंड ऑब्जेक्ट है। तो मैं एट्थ क्लास में हूं, टेंथ क्लास में हूं, वट एवर, उसके बाद सब्जेक्ट, मुझे प्रत्यक्षता करनी है, मुझे संपूर्ण पवित्र बनना है, मुझे निर्विकारी बनना है, ये सब्जेक्ट्स हैं। एम एंड ऑब्जेक्ट से ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, कि एम एंड ऑब्जेक्ट होगा तो वो सारी चीजें होंगी। तो जो मेन बहानेबाजी है, जो हमने तीन या चार चीजें बताई वो, लेकिन सारी बहानेबाजी खत्म करने का एक ही तरीका है, हाई एम एंड ऑब्जेक्ट, वेरी हाई। बनना है तो सिर्फ नंबर वन बनना है। अगर आप टू की भी सोच रहे तो भी श्रीमत के अनुसार, आप बाबा की श्रीमत पे नहीं, कहीं ना कहीं बाबा की श्रीमत पे है ही नहीं। बाबा ने कहा मैं तुम्हें आया हूं श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनाने, और बाबा रोज कम से कम 20 बार ये चीजें बोलता है, डेली साकार मुरली में ये चीज रिवाइज होती है। मैं आया हूं तुम्हें पतितों से पावन बनाने। जी, हाथ खड़ा नहीं किया। मैं हूं तुम्हें पतितों से पावन बनाने, पावन, मैं तुम्हें पतित से पवित्र बनाने नहीं आया हूं। तो पवित्र और पावन में क्या अंतर है? पवित्र और पावन में क्या अंतर है? पावन अंतिम स्थिति, और पवित्र पवित्र जो जिसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करना है। अगर आज आप बिल्कुल बाबा को छोड़ देते हैं और सब कुछ उल्टा सीधा जो भी करना है करो, तो भी आप सजाए खा के पवित्र बन ही सकते हैं, क्योंकि परमधाम में कोई भी आत्मा अपवित्र जा ही नहीं सकती, सजाए खा के बन सकते हैं। पावन जो भैया ने बोला, सतयुग में संपूर्ण देवी गुणों वाले मनुष्य, तो मैं तुम्हें पतित से पावन बनाए, वो रिवाइज करा रहा है, मैं तुम्हें किस लिए आया हूं, एम एंड ऑब्जेक्ट क्लियर करता है। तो जितना हाई एम एंड ऑब्जेक्ट होगा उतना हाई बाबा आप पे काम करेगा। जैसे हमने वो एमटेक और बीटेक वाला एग्जांपल दिया, आप दावेदारी पेश करो और एक एक हफ्ता करके देखिए, बनना है तो सिर्फ नंबर वन बनना है। अगर इस एम एंड ऑब्जेक्ट से काम करेंगे तो अपनी एक हफ्ते में ही वो जो प्रोग्रेस है वो देखिए। बट यू हैव टू रिमेंबर ऑल द टाइम, क्योंकि लक्ष्य भूलता नहीं है। एंड पॉइंट पता होना चाहिए। वेदांत दीदी जी बोलती है कि मैं हमेशा देखती हूँ हर साल कि वहां से चली थी वहां पहुंचना है, कितनी दूर पहुंची हूं। ओके, थैंक यू, ओम शांति।
अपना जी